सत्यवचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्यवचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार इसराइल परमेश्वर से पूछता है कि वे क्या करें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि आज के अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के निकट बैठे हैं, आपके वचन को सुनने की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके मन और हृदय को तैयार करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए, आपकी सत्यता उन पर प्रकट होने पाए। हर एक प्रकार की संसार की बुराइयों से, दुष्टता की बातों से, व्यर्थ की चिंताओं से आप उन्हें बचाइए, उन्हें शांति और आनंद प्रदान कीजिए। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्याय में हम सब देख रहे थे कि इसराइल पूछता है कि उसने व्यवस्था के अनुसार सब कुछ किया, अब क्या परमेश्वर उनसे उनके पहलौठों की बलि चाहता है। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 15 पद से स्पष्ट है कि परमेश्वर ने उनका पहलौठा मांगा, परंतु उसकी बलि नहीं मांगी। इसी कारण उसने कहा कि वे दाम देकर उसे छुड़वा लें। परमेश्वर ने अशुद्ध पशुओं के समान मनुष्य की बलि को क्यों नहीं रखा? क्योंकि वह भी अशुद्ध है। इसी कारण मनुष्य को जन्म देकर स्त्री भी अशुद्ध होती है। भजन संहिता 5 उसके 15 में दाऊद कहता है कि उसकी माता ने पाप में उसे धारण किया था। परमेश्वर मनुष्य को तब तक नहीं चाहता है जब तक कि वह उद्धार न पा ले, अर्थात प्रभु यीशु को ग्रहण न कर ले। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद ही परमेश्वर किसी को काम में लेता है। जी हाँ, यह अति आवश्यक है कि यदि आप परमेश्वर की सेवकाई में आना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसकी निकटता में बने रहना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात उसे अपने जीवन में लाना होगा। तब आप उसके द्वारा से अपने पापों से क्षमा पाते हैं और आप शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए आप प्रयोग में लिए जाते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। मीका 6 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे मित्रों, पद 8 मुक्त विचारकों के लिए हर्ष का कारण है, क्योंकि उनकी समझ में यह पद कर्मों द्वारा उद्धार का अनुमोदन करता है। मीका नबी वास्तव में उत्तरी राज्य के उन लोगों के लिए कह रहा है जो अंधकार में थे और परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते थे। वे जानना चाहते थे कि उन्हें कैसे कैसे बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। क्या वे अपने बच्चों की बलि चढ़ाएं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? मीका कहता है कि बाहरी दिखावा व्यर्थ है। धर्म तो वह है जिसमें मन की श्रद्धा हो। मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना है। परमेश्वर क्या चाहता है वह इस पद में व्यक्त है। मेरे प्रियो, कर्म आपको उद्धार नहीं दिला सकते, क्योंकि आपके कर्म इस योग्य हो ही नहीं सकते हैं जो आपको उद्धार दिला सके। बाइबल हमें बताती है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान हैं। हम किस रीति से धर्म कमा सकते हैं? यहां पर लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। यह पद सबके लिए है, उसी युग के नहीं परंतु आज के भी सब मनुष्यों के लिए है। तीन बातें परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। पहला, अच्छा क्या है, अर्थात परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहरना। आपको अपने साथ के मनुष्य के साथ उचित व्यवहार रखना है, सत्य एवं ईमानदार होना है। दूसरा, कृपा से प्रीति रखें। परमेश्वर की कृपा ही नहीं, मनुष्य के प्रति कृपा से प्रेम रखें। और तीसरा, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। भाइयों, आप यह कैसे करेंगे? क्या आप अपने सामर्थ्य में हो करके ऐसा कर पाएंगे? आपके विचार में आप परमेश्वर के सहयोग बिना सामर्थ होंगे? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो क्षमा करें, आप पाखंडी हैं। आपके लिए ऐसा जीवन असंभव है, क्योंकि ये फल पवित्र आत्मा के हैं, जिसे हम गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जी हां, इनमें ये तीनों बातें जिनका उल्लेख मीका नबी करता है पाए जाते हैं। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं। आज हमारे जीवन में इनमें से एक भी गुण नहीं है। इसके विषय में नए नियम में क्या कहा गया है, आइए हम देखेंगे। प्रेरितों के सामने एक प्रश्न था, क्या अन्य जाति विश्वासी व्यवस्था का पालन करें? तो प्रेरित पत्रस कहता है, प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय और उसके 11 पद में, हमारा यह विश्वास है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। पत्रस ने यह क्यों कहा? क्योंकि प्रेरितों के काम 15 उसके 10 पद में उसने कहा था, तुम अब क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। पत्रस कहता है कि वह व्यवस्था के अधीन था परंतु सिद्ध नहीं हो पाया, और वह व्यवस्था पालन के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता है, क्योंकि व्यवस्था हमें पाप का बोध कराती है परंतु उद्धार नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 5 से 9 पद में परमेश्वर पौलुस के शब्दों में स्पष्ट कहता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा आप में कैसे अंतर्वास करे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारा नया जन्म होना है, अर्थात आपको प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे अर्थात यीशु को ग्रहण किया उन्हें उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, वे जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। जी हां, जो यीशु के नाम पर यीशु पर विश्वास करते हैं वे उसके संतान बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और उनके जीवन का स्वभाव बदल जाता है। और यही कारण है कि हमें कहा गया है कि हर एक मनुष्य को यीशु के द्वारा ही उद्धार की प्राप्ति होगी। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 9 से 18 पद में पौलुस मनुष्य को परमेश्वर के न्याय आसन के समक्ष लाकर कहता है कि वह दोषी है, तदुपरांत वह मनुष्य को परमेश्वर के निदान केंद्र में लाकर कहता है कि वह रोगी है, मरणहार है, और सच तो यह है कि वह पापों में मरा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में परमेश्वर को धार्मिकता चाहिए और हम भी धर्मी हो सकते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब कोई कहे यह तो नए नियम की बात है, परंतु मेरे मित्रों, पौलुस पुराने नियम के संदर्भ को दे रहा है। भजन संहिता 14 उसके 1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आपके बारे में परमेश्वर की यही राय है, परमेश्वर धार्मिकता चाहता है, आप उसको कैसे क्या दे सकते हैं? रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि अपने बुद्धि के अनुसार भी चलने वाला कोई नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु से अलग हैं तो भी क्या आप अपने आदर्शों के अनुसार जी रहे हैं? क्या आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? क्या आप अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आपको अपने जीवन से संतोष प्राप्त होता है? क्या मैं कह सकता हूं कि कोई समझदार नहीं है? लिखा है कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। यही विचार भजन संहिता 14 उसके 2 और 3 पद में पाया जाता है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, अर्थात अपने स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार जीने वाला भी तो कोई नहीं है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में ऐसे अनेक संदर्भ हैं। परमेश्वर को धर्मी जन की आवश्यकता है, परंतु पुराना नियम अति स्पष्ट करता है कि हम परमेश्वर के निकट धार्मिकता नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास धार्मिकता है ही नहीं। अब क्योंकि धर्मी कोई नहीं, इसलिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। रोमियों की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण पकड़वाया गया और फिर जी उठा कि हम धर्मी ठहराए जाएं। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा कि परमेश्वर के आत्मा द्वारा हम में धार्मिकता को उत्पन्न करे। इस प्रकार हम धर्मी ठहराए जाएं। तब वह कहता है, मीका, कृपा से प्रीति रखें। हम में कृपा से प्रीति नहीं है। हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, क्योंकि रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यह मनुष्य की दशा है। यशाया कहता है 53 अध्याय के 6 पद में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अतः स्पष्ट है कि हम सब अधर्मी हैं, अन्यथा यशाया ऐसा कभी भी नहीं कहता। इस कारण हमें इस पद को पढ़कर पाखंडी नहीं बनना है। मीका नबी कहता है कि हम अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। परमेश्वर का खोजी कोई नहीं है, सब अपने अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। लोग अपने कार्यों को उत्तम बताना चाहते हैं, उसके द्वारा पुण्य कमाना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो, जो कि मनुष्यों के लिए मनुष्यों के द्वारा असंभव है। मैं अति विनम्र निवेदन करता हूं कि कुछ लोग आश्चर्यचकित हों और नींद से जागें। यदि आपके विचार में आपकी कलीसियाई सदस्यता या आपका चरित्र या आपके भले काम आपको परमेश्वर के निकट आने में सहायक हैं, तो मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप स्वयं में कृपा से प्रीति रखकर और परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलकर परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, तो आप स्वर्ग जाने पर परमेश्वर से कह सकते हैं कि वह एक ओर हो जाए। आप उससे कह सकते हैं कि आप अपने स्वयं के प्रयत्न के द्वारा वहां पहुंचे हैं, इसलिए वह अपने सिंहासन पर आपको स्थान दे, क्योंकि आप अपने ईश्वर हैं। जी हां, आपको इस जीवन में उसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि वह अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटेगा, तो आपको वह अपना स्थान कैसे देगा। अतः आप अपना मार्ग त्याग कर परमेश्वर का मार्ग क्यों नहीं अपनाते। प्रभु यीशु कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। वह मार्ग है, सत्य मार्ग है, वह सत्य है और वह जीवन है। ये सारी बातें वह स्वयं में है। वह कहता है कि द्वार मैं हूं जो मुझ में होकर के प्रवेश करता है, वह कभी नाश नहीं होता है। मेरे मित्रों, आपके पास भी अवसर है कि आप उस सत्य को जानें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जब हम अंधेरे में हैं, परमेश्वर के वचन की सत्यता को जब हम जानेंगे तब हम निश्चित रूप से स्वतंत्र किए जाएंगे। परमेश्वर को आवश्यकता है कि आप न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आप अपनी प्राकृतिक अवस्था का सहारा लेकर किसे मूर्ख बना रहे हैं? ओह, ऐसे पद हम पर कैसे प्रकट किए जाते हैं और यह पद हम पर कैसा प्रकट करते हैं कि हम क्या करें, क्या कहें, हम क्या हैं? कुछ लोग विनम्र तथा अच्छा व्यवहार दिखाकर सोचते हैं, वाह, शाबाश, परंतु आप परमेश्वर के मार्ग से नहीं आए हैं, आप ऐसे पाखंड में कैसे जी सकते हैं? परमेश्वर के साथ सत्यनिष्ठ क्यों ना हो, उसके पास आकर उससे कहें कि आप पापी हैं। वह तो जानता ही है, परंतु आप अपने मुंह से स्वीकार करना ताकि उसको अच्छा लगे, क्योंकि वह चाहता है कि वह आपके मुख से सुने कि आप पापी हैं। मनोवैज्ञानिक से बातें करने की अपेक्षा परमेश्वर से आप बात करना उत्तम समझें। उसे अपनी दुर्बलताएं बताएं, अपनी कठिनाइयों को बताएं, रुकावट और बाधाओं को बताएं, उसके समक्ष अपने पाप स्वीकार करें। परमेश्वर आपके पाप क्षमा करना चाहता है, वह आपका उद्धार करना चाहता है और आपको प्रभु यीशु की धार्मिकता प्रदान करना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, वह आपके पापों को क्षमा कर सकता है यदि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर इसराइल पर प्रकट करना चाहता है कि वे कितने कम हैं। परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता था क्योंकि वे जानबूझकर और लगातार निरंतर पाप कर रहे थे और इस कारण से परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता था। मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है, राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। मेरे मित्रों, लिखा है यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। हमने देखा है कि मीका की भविष्यवाणियां अधिकतर नगरों के प्रति थी। उसके लेखों से प्रतीत होता है कि वह एक परिष्कृत लेखक था, वह जाना पहचाना है, वह उच्च वर्ग का मनुष्य था, वह आमोस के विपरीत था जिसने कहा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, मैं तो एक ग्रामीण हूं जो गूलर के वृक्षों का छाटने हारा हूं जो नगर में आया था। परंतु वह परमेश्वर का जन था। इसी प्रकार मीका भी परमेश्वर का जन था, वह नगर को पुकारता है। लिखा है संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानता है, राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। भजन संहिता 2:9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। डंडा परमेश्वर के दंड का प्रतीक है जो उस राज्य पर आने वाला था। लिखा है संपूर्ण ज्ञान अर्थात उस युग में परमेश्वर में विश्वास रखने वाले और परमेश्वर के दंड के भय से उचित व्यवहार करते थे। परमेश्वर ऊंची आवाज में दंड की घोषणा करता है। परमेश्वर की धार्मिकता, सहनशीलता और क्षमाशीलता तथा धीरज के व्यवहार को समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य है, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर दंड देता है और डंडा उसके अधिकार का प्रतीक है जिसके द्वारा वह उसे दंड देगा। मेरे प्रियो, अब मीका उनके पाप को स्पष्ट प्रकट करेगा। वह उनके एक एक पाप का उल्लेख करेगा और हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वह हर एक के पाप का दंड अवश्य देता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आप पाप करके बच नहीं सकते हैं। संसार में आप बच जाएं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप नहीं बच सकते। इसलिए आज आपके पास अवसर है कि आप अपने आप को प्रभु के पास लाएं और उससे कहें कि प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे आप क्षमा करें, मुझे एक नया व्यक्ति बनाएं, क्योंकि मैं आपके आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। मेरे मित्रों, जब आप ऐसा कहेंगे तो निश्चय ही प्रभु आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन में आशीषों की परिपूर्णता होगी। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आपके साथ हो और आपकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को